बूढ़ी कैथरीन की खबर से आर्चर हिल गया। मैडम ओलेंस्का का दादी के बुलावे पर वॉशिंगटन से तुरंत आना स्वाभाविक था, पर उन्होंने बुढ़िया के घर में ही रहने का फैसला किया, वो भी तब जब श्रीमती मिंगोट लगभग ठीक हो चुकी थीं। इसकी व्याख्या आसान नहीं थी। आर्चर को यकीन था कि ये फैसला उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव से नहीं आया। पति से अलग होने पर उन्हें जो छोटी आमदनी मिली थी उसका हिसाब वो ठीक ठीक जानता था। दादी की मदद बिना मिंगोट पैमाने से वो रकम गुजारे को भी कम थी, और अब जब उनके साथ रहने वाली मेडोरा मैंसन भी दिवालिया हो चुकी थी, वो पैसा दोनों औरतों के खाने पहनने में मुश्किल से पूरा पड़ता था। फिर भी आर्चर ये नहीं मानता था कि मैडम ओलेंस्का ने दादी का प्रस्ताव केवल स्वार्थ से माना है। उनमें उन लोगों जैसी उदारता थी जो बड़ी दौलत के आदि और पैसे से बेपरवाह होते हैं, पर वे कई ऐसी विलासिताएं छोड़ भी सकती थीं जिन्हें रिश्तेदार जरूरी मानते थे। श्रीमती लवेल मिंगोट और श्रीमती वेलैंड अक्सर अफसोस करती थीं कि काउंट ओलेंस्की का अंतर्राष्ट्रीय वैभव देख चुका व्यक्ति रहन सहन के मामले में इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। इसके अलावा दादी ने महीनों पहले उनका खर्च बंद कर दिया था और तब से उन्होंने दादी की कृपा पाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए उनके रुख बदलने का कोई और ही कारण रहा होगा।
और वो कारण ढूंढना कठिन नहीं था।
नौका से लौटते समय उन्होंने आर्चर से कहा था कि दोनों को अलग रहना चाहिए, पर ये उन्होंने तब कहा था जब उनका सिर उसके सीने पर टिका था। वो जानता था कि उनके शब्दों में कोई सोची समझी अदा नहीं थी, वे भी उसी की तरह नियति से लड़ रही थी और उन लोगों का भरोसा न तोड़ने के संकल्प से बेतरह चिपकी हुई थी जो उन पर विश्वास करते थे। पर न्यूयॉर्क लौटने के बाद के इन 10 दिनों में आर्चर को चुप और दूर देखकर उन्होंने भांप लिया होगा कि वो कोई कदम उठाने वाला है, और वो भी ऐसा कदम जो पलटा न जा सके। इस विचार से शायद उन्हें अपनी ही कमजोरी का अचानक डर घेर गया हो, और शायद उन्हें लगा हो कि ऐसे मामलों में जो आम समझौता स्वीकार किया जाता है उसे मान लेना और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनना ही बेहतर है। एक घंटा पहले श्रीमती मिंगोट की घंटी बजाते समय आर्चर को अपना रास्ता साफ लग रहा था। वो मैडम ओलेंस्का से अकेले में बात करना चाहता था, और ये न हो पाता तो दादी से उनकी वॉशिंगटन वापसी का दिन और गाड़ी का समय पता करना चाहता था। उसी गाड़ी में बैठने का इरादा था, और अगर वे इजाजत दें तो वॉशिंगटन से कहीं आगे तक साथ जाने का। उसकी कल्पना जापान तक जा पहुंची। कुछ भी हो, वे तुरंत समझ जातीं कि वो जहां भी वे जाएं साथ जाएगा, और मे के लिए वो ऐसा पत्र छोड़ने की सोच रहा था जो उसके पास कोई और रास्ता न छोड़े।
उसने सोचा था कि वो ये कदम उठाने को केवल तैयार ही नहीं बल्कि आतुर है। फिर भी जब उसने सुना कि हालात बदल गए हैं तो पहली प्रतिक्रिया राहत की थी। अब श्रीमती मिंगोट के घर से पैदल लौटते हुए उसे अपने आगे पड़ी बात के प्रति बढ़ती हुई अरुचि महसूस हो रही थी। जिस रास्ते पर उसे चलना था उसमें कुछ भी नया या अनजाना नहीं था, पर पहले जब वो उस रास्ते पर चलता था तब वो आजाद आदमी था। अपने कामों का हिसाब किसी को नहीं देना था, और वो उन सावधानियों, गोलमोल बहानों, छिपावों और समझौतों में एक मजेदार दूरी के साथ शामिल हो सकता था जो ये भूमिका मांगती है। इस प्रक्रिया को किसी स्त्री की इज्जत बचाना कहा जाता था, और सबसे अच्छे उपन्यासों तथा उसके बड़ों की भोजनोपरांत बातचीत ने बहुत पहले उसे इस संहिता का हर ब्योरा सिखा दिया था। अब वो इस मामले को नई नजर से देख रहा था, और उसमें अपनी भूमिका उसे साफ तौर पर सिकुड़ी हुई लग रही थी। दरअसल वो उस अभिनय से अलग नहीं थी जो श्रीमती थॉर्ली रशवर्थ अपने स्नेही और बेखबर पति के सामने करती थी, वही अभिनय जिसे उसने गुप्त गर्व से देखा था। हंसी मजाक, मन रखना, सावधान झूठों की एक कतार, दिन रात के झूठ, हर स्पर्श और हर नजर में झूठ, हर दुलार और हर झगड़े में छिपे झूठ, हर शब्द और हर चुप्पी में बसे झूठ।
कुल मिलाकर पति के सामने ये भूमिका पत्नी निभाए तो ये आसान भी था और कम कायरतापूर्ण भी। स्त्री से अपेक्षित सच्चाई का स्तर चुपचाप नीचा माना जाता था। अधीन प्राणी होने के नाते उसे दबे हुए लोगों की कलाओं में निपुण समझा जाता था। इसके अलावा वो हमेशा मिजाज या नसों का बहाना कर सकती थी और सख्ती से न परखे जाने का हक मांग सकती थी। सबसे कठोर समाजों में भी हंसी अंततः पति पर ही आती थी, पर आर्चर की सैंकड़ी दुनिया में ठगी गई पत्नी पर कोई नहीं हंसता था,
और शादी के बाद भी बेवफाई करने वाले आदमी के साथ एक खास तिरस्कार जुड़ा रहता था। रंगरलियों का मौसम जवानी में एक बार सह लिया जाता था, पर शादी के बाद नहीं। आर्चर भी इसी राय का था। अपने मन की गहराई में वो लेफर्ट्स को हेय समझता था, पर एलन ओलेंस्का से प्रेम करना लेफर्ट्स जैसा आदमी बन जाना नहीं था। पहली बार आर्चर विशेष मामले के भयानक तर्क से आमने सामने हुआ। एलन ओलेंस्का किसी और स्त्री जैसी नहीं थी और वो किसी और पुरुष जैसा नहीं था, इसलिए उनकी स्थिति भी किसी और की स्थिति जैसी नहीं थी और उन्हें अपने विवेक के सिवा किसी को हिसाब नहीं देना था। हाँ, पर 10 मिनट बाद वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ेगा और वहां मैं होगी, आदत होगी, मान होगी और वे सारी पुरानी मर्यादाएं होंगी जिन पर उसके अपने हमेशा भरोसा करते आए थे। कोने पर वो एक पल ठिठका,
फिर 5th Avenue पर आगे बढ़ता चला गया। सर्दी की रात में उसके सामने वो विशाल बुझा हुआ घर उभर रहा था। पास आते उसे याद आया कि कितनी बार उस घर को रोशनियों से जगमगाते देखा था। सीढ़ियों पर शामियाना और कालीन, फुटपाथ तक दोहरी कतार में गाड़ियां। इसी घर के बगल वाले अंधेरे शीश घर में उसने मे को पहला चुंबन दिया था और इसी घर के नृत्य कक्ष की अनगिनत मोमबत्तियों के नीचे वे रहस्यमय चांदी सी दमकती हुई किसी युवा डायना की तरह प्रकट हुई थी। अब वो घर कब्र सा अंधेरा था। तहखाने में एक गैस की लौ मध्यम कांप रही थी और ऊपर के किसी कमरे में बिना गिराए गए पर्दे से रोशनी छन रही थी। कोने पर पहुंचकर आर्चर ने दरवाजे के सामने खड़ी एक गाड़ी देखी। वो श्रीमती मैनसन मिंगोट की गाड़ी थी। अगर सिलटन जैक्सन इधर से गुजरते और ये दृश्य देख लेते तो क्या क्या न कहते। आर्चर को बूढ़ी कैथरीन की ये बात गहराई तक छू गई थी कि मैडम ओलेंस्का श्रीमती बोफर से कैसा बर्ताव कर रही है। उस कहानी ने न्यूयॉर्क समाज की भर्त्सना को पराई चीज की तरह पास से गुजर जाने दिया, पर वो जानता था कि क्लबों में एलन ओलेंस्का की इस भेंट का क्या अर्थ निकाला जाएगा। वो रुका और रोशन खिड़की की ओर देखा। दोनों औरतें जरूर उसी कमरे में होंगी। बोफर शायद कहीं और तसल्ली ढूंढ रहा होगा। कहा जाता था कि वो फैनी रिंग के साथ न्यूयॉर्क छोड़ गया है,
पर श्रीमती बोफर के रवैये से ये अफवाह मानने लायक नहीं लगती थी। 5th Avenue का रात का दृश्य लगभग आर्चर के ही हिस्से था। इस समय अधिकतर लोग घर के भीतर रात के खाने के लिए कपड़े बदल रहे होते थे। ये सोचकर उसे चोरी सी राहत हुई कि एलन का निकलना किसी की नजर में नहीं आएगा। वो यही सोच रहा था कि दरवाजा खुला और वे बाहर आईं। उनके पीछे एक धुंधली रोशनी थी, मानो कोई सीढ़ियां रोशन करके उन्हें राह दिखा रहा हो। उतरने से पहले उन्होंने किसी से एक बात कही, फिर दरवाजा बंद हुआ और वे सीढ़ियां उतर आईं। एलन, उन्होंने फुटपाथ पर कदम रखा तो उसने धीमे स्वर में पुकारा। वे कुछ चौंक कर रुकी और तभी उसने फैशन के कपड़े पहने दो नौजवानों को आते देखा। उसने उनके ओवरकोट, रेशमी मफलर पर टिकी सफेद टाइयां और वो शानदार चाल पहचान ली। उसे अचरज हुआ कि इस समय ये बाहर कैसे, पर तुरंत याद आया कि कुछ घर ऊपर रहने वाले रेगी चिवर्स दंपति उस रात एक बड़े दल को एडिलेड नीलसन का रोमियो और जूलियट दिखाने ले जा रहे हैं और समझ गया कि ये दोनों उसी दल के हैं। वे लैंप के नीचे से गुजरे और उसने लॉरेंस लेफर्ट्स तथा युवा चिवर्स को पहचान लिया। ये ओछी इच्छा कि मैडम ओलेंस्का बोफर के दरवाजे पर न देखी जाए उनके हाथ की गर्माहट महसूस होते ही उड़ गई। अब मैं आपसे मिल सकूंगा, हम साथ रहेंगे, वो फूट पड़ा ये जाने बिना कि क्या कह रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा, तो दादी ने आपको बता दिया।
उन्हें देखते हुए उसने ध्यान दिया कि लेफर्ट्स और चिवर्स सामने के कोने पर पहुंचकर चुपचाप 5th Avenue पार कर गए। ये वही मौन पुरुष एकजुटता थी जो वो खुद अक्सर निभा चुका था, पर अब उनकी ये मौन सहमति उसे घिन दिलाती थी। क्या वे सचमुच सोचती हैं कि उसके साथ इसी तरह जिया जा सकता है? और अगर नहीं, तो आखिर वे सोचती क्या है? कल मुझे आपसे मिलना है, कहीं ऐसी जगह जहां हम अकेले हो सके, उसने ऐसे स्वर में कहा जो खुद उसके कानों को लगभग क्रोधित लगा। वे एक पल झिझकी और गाड़ी की ओर बढ़ी। फिलहाल मैं दादी के यहाँ रहूंगी, अभी और कोई चारा नहीं, उन्होंने जोड़ा, मानो योजना बदलने पर सफाई जरूरी हो, कहीं ऐसी जगह जहां हम अकेले हो सके, आर्चर ने दोहराया। उन्होंने उसे हल्की व्यंग्य भरी हंसी दी जिससे उसका मन कसेला हो गया। न्यूयॉर्क में
पर यहाँ न गिरजे हैं, न स्मारक। पार्क में एक संग्रहालय है। वे अचरज से देखने लगीं तो उसने समझाया, 2:30 बजे मैं दरवाजे पर रहूंगा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, मुड़कर तेजी से गाड़ी में चढ़ गई। गाड़ी चली तो वे आगे झुकी और उसे लगा कि वे अंधेरे में हाथ हिला रही हैं। आर्चर उलझी भावनाओं के साथ देखता रहा। उस क्षण उसे लगा कि उसने प्रिय स्त्री से नहीं, किसी ऐसी स्त्री से बात की है जिससे वो ऊब चुका है और जिसका एक सुख उस पर उधार है। इस घिसी भाषा में कैद होने पर उसे खुद से नफरत हुई। वे आएंगी, उसने लगभग तिरस्कार से खुद से कहा।
अगले दिन उन्होंने प्रसिद्ध वुल्फ संग्रह से बचकर, जिसकी किस्सा गो तस्वीरें मेट्रोपॉलिटन के ढलवा लोहे और जड़ी टाइलों के उस विचित्र वीराने के एक बड़े कक्ष को भरे हुए थी, चेस्नोला की शांत और उपेक्षित पुरावस्तुओं वाले कक्ष में प्रवेश किया। वे उस सूने कक्ष में अकेले बीच की हीटर के चारों ओर बने दीवान पर अगल बगल बैठे रहे और ट्रॉय से मिली वस्तुओं की कांच की अलमारियों को चुपचाप देखते रहे। अजीब है, मैडम ओलेंस्का ने कहा, मैं यहाँ कभी नहीं आई। खैर, किसी दिन ये एक शानदार संग्रहालय बनेगा।
हाँ, उन्होंने अनमने ढंग से सहमति दी। वे उठी और कक्ष में टहलने लगी। आर्चर बैठा बैठा उनकी हल्की चाल देखता रहा। मोटी फर की पोशाक के नीचे भी उनकी किशोरी सी काया, टोपी में कुशलता से खोंसा बगुले का पंख और कान के ऊपर गालों पर गिरी काली लठ, सब उसकी दृष्टि बांधे रहे। हर बार की तरह जब वो उन्हें पहली बार देखता, वो उस विशेष आकर्षण के पूरे वश में आ गया जो केवल उनका था। आखिर वो उठा और उस अलमारी के पास गया जिसके सामने वे खड़ी थी। कांच की तख्तियों पर कांच, मिट्टी, धूमिल कांसे और समय से मैली सामग्री की छोटी टूटी चीजें भरी थीं। मुश्किल से पहचाने जाने वाले बर्तन, गहने, निजी सामान। यह क्रूर लगता है, उन्होंने कहा, समय बीतने पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहता। भूले बिसरे लोगों के लिए जो जरूरी और प्यारा रहा होगा, अब उसे आवर्धक शीशे से देखकर उपयोग अज्ञात का लेबल लगाना पड़ता है, इन छोटी चीजों की तरह। हाँ, पर तब तक, आह, तब तक। वे अपने लंबे सील चर्म कोट में खड़ी थीं, हाथ एक छोटे गोल मफ में डाले, नकाब नाक की नोक तक पारदर्शी मुखौटे सा गिरा था और उसका दिया बनफ्शे का गुच्छा उनकी तेज सांस से हिल रहा था। उसे ये अविश्वसनीय लगा कि ये स्पष्ट और सुसंगत सौंदर्य भी परिवर्तन के मामूली नियम को भोगेगा।
तब तक हर चीज महत्वपूर्ण है, हर वो चीज जो आपसे जुड़ी हो, उसने कहा। वे सोच में डूबी उसे देखती रहीं, फिर दीवान पर लौट आईं। आर्चर उनके पास बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा, पर अचानक खाली कक्ष के दूसरे छोर पर गूंजते कदमों की आवाज आई और उसे लगा कि समय कम बचा है। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने पूछा, मानो उन्हें भी वही चेतावनी मिली हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसने कहा, मुझे लगता है आप न्यूयॉर्क इसलिए आईं कि आप डरी हुई थीं, डरी हुई कि मैं वॉशिंगटन आ जाऊंगा। उन्होंने मफ की ओर नजर झुकाई और उसने भीतर उनके हाथों की बेचैन हरकत देखी। तो हाँ, सच है, उन्होंने कहा, आप डरी थी, आपको पता था। हाँ, मुझे पता था। तो फिर, उसने जोर दिया, तो फिर क्या ऐसे ही बेहतर नहीं है, उन्होंने लंबी सांस छोड़ते हुए पूछा। बेहतर, ऐसे हम दूसरों को कम चोट पहुंचाएंगे। आखिर आप यही तो चाहते थे, यानी आप हाथ भर की दूरी पर रहें और मैं छू भी न सकूं, ऐसे चोरी छिपे मिले। ये तो ठीक उल्टा है उससे जो मैं चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कह दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ, वे झिझकी, और आपको अब भी लगता है कि ये बदतर है, 1000 गुना। वो रुका, मैं आपसे झूठ बोल सकता था, पर सच कहूँ तो ये भयानक है, ओ, मेरे लिए भी।
उन्होंने राहत की गहरी सांस के साथ कहा। आर्चर से रहा नहीं गया और वो उछलकर खड़ा हो गया। तो अब पूछने की बारी मेरी है, ईश्वर के नाम पर आप किसे बेहतर कहती हैं? उन्होंने सिर झुका लिया और मफ के भीतर हाथ बार बार जोड़ती खोलती रही। कदमों की आवाज पास आई और टोपी पहने एक चौकीदार भावहीन चेहरे से कक्ष पार कर गया, जैसे कोई भूत कब्रिस्तान में घूमता हो। दोनों ने एक साथ सामने की अलमारी की ओर देखा। जब चौकीदार ममियों और ताबूतों वाले कक्ष के पीछे ओझल हो गया तो आर्चर ने फिर कहा, आप किसे बेहतर कहती हैं? उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस बुदबुदाई, मैंने दादी से साथ रहने का वादा किया क्योंकि यहाँ मैं खुद को अधिक सुरक्षित पाऊंगी।
मुझसे सुरक्षित? उन्होंने उसकी ओर देखे बिना हल्के से सिर हिलाया। मुझसे प्रेम करने से अधिक सुरक्षित? उनका पार्श्व चेहरा नहीं हिला, पर उसने देखा कि पलकों से छलक कर आंसू नकाब की जाली में अटक गए हैं। ऐसी चोट देने से अधिक सुरक्षित जो भरी न जा सके। हम दूसरों जैसे न बने, उन्होंने विनती की। किन दूसरों जैसे? मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे अलग हूँ। मैं भी उन्हीं इच्छाओं और उसी तड़ से जल रहा हूँ। उन्होंने कुछ भय से उसकी ओर देखा और उनके गालों पर हल्की लाली उतर आई। क्या मैं एक बार आपके पास आ जाऊं
और फिर घर लौट जाऊं? उन्होंने अचानक धीमी, साफ और सतर्क आवाज में कहा।
युवक के माथे पर खून चढ़ाया। मेरी प्रिय, उसने बिना हिले कहा, जैसे उनका दिल उसकी हथेली में हो, भरे प्याले सा जो जरा हिलते ही छलक जाए। फिर उनके अंतिम शब्द उसके कानों में उतरे और उसका चेहरा बादल सा गहरा गया।
घर लौट जाना, इसका क्या मतलब?
अपने पति के पास लौट जाना, और आपको लगता है मैं इसकी इजाजत दूंगा? उन्होंने बेचैन आंखों से उसे देखा। और है ही क्या, जिन लोगों ने मेरे साथ भलाई की उनसे झूठ बोलते हुए मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चली चलिए, और जिन्होंने मेरी जिंदगी दोबारा खड़ी की उनकी जिंदगी उजाड़ दूं। आर्चर असह्य निराशा में उछलकर खड़ा हुआ और ऊपर से उन्हें देखने लगा।
हाँ आइए, बस एक बार आइए, कह देना आसान होता। वो जानता था कि सहमत होने पर वे उसके हाथ में कितनी बड़ी शक्ति सौंप देंगी, तब उन्हें पति के पास लौटने से रोकना जरा भी कठिन न होता। पर किसी चीज ने ये शब्द उसके होंठों पर रोक दिए। उनकी भावुक ईमानदारी ने ये कल्पना ही असंभव कर दी कि वो उन्हें उस जाने पहचाने जाल में खींचे। अगर मैंने उन्हें बुलाया तो मुझे उन्हें वापस भेजना ही पड़ेगा, उसने मन में कहा, और ये अकल्पनीय था।
पर उसने उनके भीगे गाल पर पलकों की छाया देखी और डगमगा गया।
आखिरकार उसने फिर शुरू किया, हमारी अपनी भी एक जिंदगी है। असंभव को साधने का कोई अर्थ नहीं। कुछ चीजों को आप बिना पूर्वग्रह के देखती हैं। गॉर्गन के चेहरे में सीधे देखने की आदि है, तो हमारी स्थिति को जैसी है वैसी देखकर स्वीकार क्यों नहीं कर पाती? क्या आपको लगता है ये त्याग इतने लायक है? उनका चेहरा अचानक कठोर हो गया और होंठ धीरे धीरे भींच गए।
मान लीजिए हाँ, तो मुझे चलना चाहिए, उन्होंने कहा और सीने से एक छोटी घड़ी निकाली।
वे मुड़ी और वो पीछे जाकर उनकी कलाई थाम बैठा। तो फिर ऐसा करें, बस एक बार मेरे पास आइए, उसने कहा, उन्हें खो देने के विचार से अचानक बदहवास होकर। दोनों एक पल लगभग शत्रु की तरह एक दूसरे को देखते रहे।
कब? उसने जिद की।
कल, वे झिझकी और बोली।
परसों,
मेरी प्रिय, उसने फिर कहा।
उन्होंने अपनी कलाई छुड़ा ली, पर कुछ देर वे एक दूसरे को देखते रहे। उनका चेहरा पीला था, पर भीतर की गहरी रोशनी से भरा। उसका दिल विस्मय से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने प्रेम को इससे पहले कभी दृश्य रूप में नहीं देखा।
अरे देर हो जाएगी, नमस्ते, यहाँ से आगे मेरे साथ मत आइए, उन्होंने कहा, और फिर मानो उसकी आंखों की चमक ने उन्हें डरा दिया हो, वे लंबे कक्ष के साथ तेजी से चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर वे एक पल मुड़ी और हाथ हिलाकर जल्दी से विदा ली। आर्चर अकेला घर लौटा।
जब वो घर में दाखिल हुआ तो अंधेरा उतर रहा था और उसने ड्योढ़ी की जानी पहचानी चीजों को ऐसे देखा जैसे कोई उन्हें कब्र के उस पार से देख रहा हो।
नौकरानी ने उसके कदम सुने और ऊपर दौड़कर सीढ़ी के मोड़ की गैस बत्ती जला दी।
क्या मालकिन घर पर है?
नहीं साहब, मालकिन दोपहर के खाने के बाद गाड़ी से निकली और अभी लौटी नहीं।
राहत के भाव से आर्चर पुस्तकालय में गया और आराम कुर्सी पर गिर सा पड़ा।
नौकरानी पीछे आई, खड़ा लैंप रखा और बुझती अंगीठी में कोयला डाला। उसके जाने के बाद वो निश्चल बैठा रहा, कोहनियां घुटनों पर, ठुड्डी जुड़े हाथों पर, और लाल दहकते अंगारों को ताकता रहा। किसी सचेत विचार या समय के बोध के बिना वो एक गहरे और भारी विस्मय में डूबा था जो जीवन को जगाने के बजाय रोक देता था।
हाँ, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, वो खुद से दोहराता रहा मानो नियति के हाथ में लटका हो।
उसने जिसका सपना देखा था वो इतना अलग था कि उसकी मस्ती में एक जानलेवा ठंडक घुली थी।
तभी दरवाजा खुला और मी भीतर आई।
बहुत देर हो गई, तुम चिंतित तो नहीं हुए? उसने कहा और अपने लिए दुर्लभ स्नेह से हाथ उसके कंधे पर रखा। वो चौंक कर उठा।
देर हो गई क्या? 7 बज चुके हैं, लगता है तुम सो गए थे। वो हंसी, टोपी से पीने निकाली और मखमली टोपी सोफे पर फेंक दी। वो हमेशा से अधिक पीली थी, पर एक अनोखी स्फूर्ति से दमक रही थी। मैं दादी के यहाँ गई थी और जब चलने को हुई तो एलेन सैर से लौट आई, सो मैं रुक गई और हमने बहुत देर तक बातें की। इतनी लंबी बात बहुत समय बाद हुई। वो अपनी जगह बैठ गई और उंगलियों से बिखरे बाल संवारने लगी। आर्चर ने महसूस किया कि वो उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। सचमुच की बातचीत थी, उसने उस मुस्कान के साथ कहा जो आर्चर को बनावटी लगी। वे बहुत स्नेही थी, वही पुरानी एलेन। मुझे लगता है इधर मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी। आर्चर उठा, अंगीठी के पास गया और लैंप की रोशनी से परे टिक गया। हाँ, तुमने क्या सोचा, उसने पूछा जब वो रुक गई। यही कि शायद मैंने उन्हें ठीक से नहीं परखा। बाहर से वे बहुत अलग हैं, उन्हें अजीब लोग पसंद आते हैं और नजर में आना अच्छा लगता है, शायद यूरोप की चमकदार जिंदगी की वजह से। हमारी जिंदगी उन्हें उबाऊ लगती होगी, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहती। वो लंबे भाषण से कुछ हांफती हुई बैठी रही, होंठ जरा खुले और चेहरा गहरा लाल।
आर्चर ने उसके चेहरे पर फैली ये जीवंतता देखी और उसे सेंट ऑगस्टीन के बाग में दिखी वो चमक याद आई। उसे उसमें किसी चीज से निकलकर एक बड़े संसार की ओर बढ़ने का धुंधला प्रयास महसूस हुआ। ये एलेन से नफरत करती है, आर्चर ने सोचा, और उस भाव को जीतने की कोशिश कर रही है और मुझसे कह रही है कि जीतने में मदद करूं। इस विचार ने उसका मन हिला दिया और एक पल के लिए उसे चुप्पी तोड़कर उसकी दया पर खुद को छोड़ देने की इच्छा हुई। तुम समझते हो ना, उसने आगे कहा, कि परिवार कभी कभी उनसे क्यों झुझला जाता था। शुरू में हम सबने उनके लिए जो बन पड़ा किया, पर लगता था वे कभी समझ ही नहीं पाती। और अब उन्होंने श्रीमती बोफर से मिलने जाने की सूझी, वो भी दादी की गाड़ी में। उन्होंने वान डेर लुइडेन दंपति को तो पूरी तरह निराश कर दिया होगा। अच्छा, आर्चर झुंझलाहट भरी हंसी हंस पड़ा। उनके बीच खुला दरवाजा फिर बंद हो गया। कपड़े बदलने का समय है, हम बाहर खाना खा रहे हैं ना, उसने अंगीठी से हटते हुए पूछा। वो भी उठी पर आग के पास ही ठहरी रही। जब वो उसके पास से गुजरा तो वो आगे बढ़ी, मानो उसे रोकना चाहती हो। दोनों की नजरें मिली और उसकी आंखें उसी नम नीलेपन से चमक रही थीं जो आर्चर ने जर्सी सिटी जाते समय देखा था। उसने बाहें उसके गले में डाली और अपना गाल उसके गाल के पास किया। आज तुमने मुझे चूमा ही नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा, और आर्चर ने महसूस किया कि वो उसकी बाहों में कांप रही है।